بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ سن رہے ہیں اردو پوڈ کاسٹ اور میرا نام وقاص میر ہے. ہمارے آج کے اسپیشل گیسٹ ہیں مولانا سلیم الوی صاحب, اور ان کو سب سے پہلے تو میں ویلکم کہوں گا. آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ رمضان کے بارے میں ہوگا, تو چلتے ہیں مولانا صاحب کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسی طبیعت ہے آپ کی؟
جی الحمد للہ
ماشاء اللہ
ٹھیک ہے.
بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا ایک بار پھر ہمارے اس پلیٹفارم پہ. آج بات ہوگی رمضان کے بارے میں, اور رمضان ہمارے لیے کیا لے کے آتا ہے, ہم رمضان سے کیا کچھ سیکھتے ہیں, کیا کچھ پا سکتے ہیں. تو آپ رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ ہمارے لسنر جو ہیں وہ کچھ سیکھ سکیں. آج
اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کا ماننے والا بنایا ہے. دین اسلام دین فطرت ہے, اور دین فطرت ہونے کے لحاظ سے یہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کی ہر کیفیت میں ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے. جب ہم عبادات کی بات کرتے ہیں, عبادات ہوں, معاملات ہوں, معاشرت ہو, معیشت ہو, یہ سارے ہمارے دین کا حصہ ہیں. یعنی عام طور پہ سمجھا ہی جاتا ہے کہ شاید نماز روزہ یہی دین کا نام ہے, یہ آپ کی عبادات ہیں. اس کے بعد آپ کے معاملات آ جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کی معاشرت آتی ہے, لوگوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن آتا ہے, پھر آپ کی معیشت آتی ہے. یہ چیزیں بھی آپ کی اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح اسلام ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے, اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے. ان کو آپ پورا کریں گے تو اس کے بعد آپ کی معیشت, اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی معیشت نہیں رہے گی, وہ آپ کی عبادت بن جائے گی. اسی طرح آپ کی جو معاشرت ہے, زندگی گزارنا ہے, اس میں جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے طریقہ, اس کو فالو کریں گے تو وہ آپ کا عبادات کے زمن میں اس کا شمار ہوگا, اس کا اسی طرح اجر ہوگا, اس کی اسی طرح اہمیت ہوگی. تو سب سے پہلے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنا یہ کنسیپٹ تھوڑا سا ٹھیک کرنا چاہیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمارا مذہب نہیں ہے, وہ دین ہے, وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس کے بعد جب ہم اسلام کے نظام عبادات پہ آتے ہیں تو ہر عبادت وہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں پنہا ہیں, بہت ساری اس کی جو ہے وہ اس کے فوائد ہیں جو انسان اپنی زندگی میں محسوس کر سکتا ہے. اب نماز کو آپ دیکھیں کہ نماز آپ کو ایک لحاظ سے ایک ڈسپلن سکھاتی ہے. ڈسپلن آپ نے اپنی پرائیورٹی سیٹ کرنی ہے مختلف ٹائم میں, رات کو سوتے ہوئے بھی, صبح اٹھتے ہوئے بھی, پھر دن کی مصروفیات میں, ہر چیز میں آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے. ڈسپلن, تو ایک مسلمان اس کو ڈسپلنڈ ہونا چاہیے. دوسرا جو روزہ ہے, تو روزہ بیسیکلی آپ کو کنٹرول کا جو ہے وہ سبق دیتا ہے کہ آپ اپنے اوپر تاکہ کنٹرول کریں, اور کنٹرول ان دا سینس کہ اپنی خواہشات کے اوپر بھی کنٹرول کریں, کنٹرول اپنی ضروریات کے اوپر بھی ہے, کنٹرول اپنی زندگی کی ہر کیفیت کے حوالے سے, کہ تاکہ آپ خواہشات کے پیچھے نہ چلیں, بلکہ ایک جس طرح نماز کے ذریعے ہم نے سبق سیکھا کہ ہم ڈسپلن سیکھتے ہیں, تو اسی طرح روزے کے ذریعے ہمیں ایک کنٹرول کی ریہرسل کروائی جاتی ہے, کنٹرول یور سیلف.
لیکن رمضان کیونکہ کنٹرول سکھاتا ہے, زیادہ تر لوگ جو ہیں انکلوڈنگ میں خود اور جو میرے جن کو میں دیکھتا ہوں, ہم رمضان کو کئی دفعہ ایسے دیکھتے ہیں کہ صرف اس مہینے ہی کنٹرول کرنا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ارد گرد, ظاہر سی بات ہے ہم سے کوئی بھی اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا, لیکن کوشش تو کرتے ہیں ہم. تو کیا آپ یہ زیادہ دیکھ رہے ہیں آج کل کے امتی میں کہ وہ رمضان کے مہینے میں ہی بس متقی ہوتا ہے کیونکہ شیطان بند ہوتا ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ بس اسی مہینے ہونا ہے, باقی عید کا کیا نام ہے چاند نظر آتے ہی سب کچھ دوبارہ ویسی ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
بیسیکلی جب بات آتی ہے نا, دیکھیں اسلام ہمیں ہمارے سامنے دونوں راستے رکھ دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ انا ہدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا, کہ ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں, وہ چاہے تو شکر گزار بنائے اور چاہے تو وہ ناشکری کرے, نافرمانی کرے, وہ اس کی اپنی اوپر ہے. اسلام مجبور نہیں کرتا ہے کہ فورسفلی آپ نے یہ کام کرنا ہے. دیکھیں روزے کے ذریعے ہم نے ایک کنٹرول کی ریہرسل تو کی ہے, اور یہ روزہ بیسیکلی ایک مہینہ جب آپ جو ہے وہ اس کی ریہرسل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو سال کے باقی 11 مہینے آپ نے اس ٹریننگ کو جو ہے وہ عمل میں لانا ہے, اس کے مطابق اپنے معاملات چلانے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں نا کہ حلال چیزیں ہیں, आपकी ज़रूरत भी है, यानी ख्वाहिश नहीं ज़रूरत है, आप खाना चाहते हैं पीना चाहते हैं, लेकिन एक मखसूस वक्त में आप वो चीज़ें मैसर होने के बावजूद भी आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसे ये चीज़ सिखाई जाती है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को एक तो महदूद करे, दूसरे नंबर पर वो अपनी ज़रूरियात को भी महदूद करे, सिर्फ ख्वाहिशात को नहीं ज़रूरियात को भी। फिर तीसरा जो रमज़ान हमें ये सबक सिखाता है कि जिस तरह हम भूख और प्यास 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे का रोज़ा है, अब तो चूँकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया, पीछे 18 20 20 22 घंटे तक भी रोज़ा गया, तो जितनी भी उसकी ड्यूरेशन हो, कम हो या ज़्यादा हो, तो उस ड्यूरेशन में हम अपने जिस तरह भूख प्यास और उन सारी चीज़ों से रुकते हैं, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ये देखें कि हमारे गिर्दो पेश में, हमारे जानने वालों में, हमारे सोशल सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें दिन में एक वक्त भी पेट भर के खाना मैसर नहीं है और पूरा साल उनको मैसर नहीं है, उनकी उनके ऊपर क्या गुजरता होगा, कैसे वो अपना ज़िंदगी के मामलात चलाते होंगे। ताकि हम दूसरों का एहसास करें, दूसरों की फिक्र सिर्फ अपने ऊपर ही जो है वो ना रहें, बल्कि दूसरों की भी हम फिक्र करें।
बिल्कुल, बहुत खूब। एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे, जो कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, शायद जब भी गैर मुस्लिम लोगों से बात होती है तो उनको किसी न किसी मुसलमान ने ये बताया होता है कि रमज़ान के पीछे मकसद सिर्फ ये है कि आपने ये जानना है कि जो गरीब लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही दफ़ा सुनने को मिला है जब मैं काम करता था मुख्तलिफ कंपनीज में, वहाँ पर भी कि आपका कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप इसलिए रोज़ा रख रहे हैं कि सिर्फ ये पता चले कि गरीब लोग कैसे महसूस करते हैं। मैं उनको फिर करेक्ट करता था कि ये नहीं है, तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए।
मैंने तो पहले जिक्र किया, उसकी तरफ मुख्तसर सा इशारा किया है कि रोज़ा सिर्फ दूसरों का एहसास नहीं पैदा करवाता, सबसे पहले तो जो है वो रिहर्सल करवाता है कंट्रोल की, कि हम अपने ऊपर कंट्रोल, ख्वाहिशात के पीछे न चलें, ख्वाहिशात के बेदाम गुलाम न बने, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करें। और उसमें हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि जो अल्लाह की हलाल करदा चीज़ें हैं वो मखसूस वक्त तक हम उनको इस्तेमाल करने से रुक जाते हैं, तो हराम चीज़ें जो हैं वो तो कभी भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसीलिए हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि दो किस्म के रोज़े हैं, एक रोज़ा तो वो है कि जो हम शाम को इफ्तार कर देते हैं, और एक रोज़ा वो है कि जो सारी ज़िंदगी का रोज़ा है। सारी ज़िंदगी आपने जो वो ख्वाहिशात नफ्स के पीछे नहीं चलना है, सारी ज़िंदगी आपने हराम से अपने आप को बचा के रखना है, फवाहिश से बचा के रखना है, तो ये बेसिकली तो उस रिहर्सल से गुजारा जाना है। तो ये जो है वो दूसरों का एहसास, इट्स अ पार्ट ऑफ फास्टिंग, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ फास्टिंग है ही इस चीज का नाम कि आप सिर्फ दूसरों को की फिक्र करें।
बिल्कुल, जो जवाब मैं चाहता था वो शायद इसका अगला पार्ट होगा, ए बी। ए आपने जवाब दे दिया, बी यानी कि तुमसे पहले लोगों पे भी, इसके ऊपर जिक्र करना चाहता था मैं कि इसके
जब, जब हम बात करते हैं ना नमाज की, रोजा की, इसी तरह जक़ात की,
जी जी
ठीक है, ये तीनों इबादत ऐसी इबादत हैं कि जो सिर्फ हम पे फर्ज नहीं हुई है, ये पहली शरीयतों में भी इसी, अब उनके शरी अहकाम क्या थे, उनकी ड्यूरेशन क्या थी, क्या था वो हमारा चूंकि टॉपिक नहीं है, उसकी डिटेल में जाने का फायदा भी कोई नहीं है। मकसद ये है कि रोजे का कंसेप्ट पहली उम्मतों में भी था, इसी तरह ये कंसेप्ट, इसको ज़कात का कंसेप्ट पहली उम्मतों में भी था, नमाज का कंसेप्ट पहली उम्मतों में भी था, और कुरान में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अम्बिया का जिक्र किया। मगर सूरह अम्बिया की आपको मिसाल दूँ, 17वें पारे में है, सूरह अम्बिया में बाकायदा अल्लाह ने जिक्र किया, और उस जिक्र में वहाँ पे उन अम्बिया के नाम लेके फिर अल्लाह ने वहाँ पे आखिर में ये कहा कि उन सब को वजअलना हुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना वअहयना इलैहिम फ़िअल खैरात व इक़ामस्सलाह व इताअज़्ज़का व कानू लना आबिदीन। हमने उनको लोगों का इमाम बनाया था, उन अम्बिया को, वो लोगों की रहनुमाई करते थे, और हमने उन्हें हुक्म दिया था वो नमाज कायम करते थे, ज़कात अदा करते थे, हमारी इबादत करते थे। तो नमाज, ज़कात और ये कंसेप्ट पहली उम्मतों में इसी तरह मौजूद था।
ठीक, तो अभी जो हमें लोग सुन रहे हैं, खासतौर पर उनमें कई यंगस्टर्स भी हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ज़्यादा लोग यही बताते हैं अपने दोस्तों को जो कि नॉन मुस्लिम होते हैं, तो कुछ अल्फाज में वो कैसे समझा सकते हैं किसी गैर मुस्लिम को। और सैडली हम कुछ मुसलमानों की हालत यही है कि हम खुद दीन से इतने दूर हैं, ये नहीं पता होता कि क्या कहना है क्या नहीं कहना, और जैसे मैंने पहले आपको शुरू में बताया कि इमोशनली दूसरे को इसे हम समझाने के लिए कि हम इसलिए रख रहे हैं कि पता चले कि गरीब किस चीज़ से गुजरते हैं, मेरे सामने हो चुका है बहुत बार, तो कुछ अल्फाज में कॉन्क्रीट क्या कहना चाहिए?
देखें, रोज़े का जो मकसद है ना, वो हरगिज़ मकसद नहीं है। हमारे यहाँ तो मैं अगर छोटी सी बात करूँ, हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है कि अफ्तार डिनर का एक ट्रेंड है, ठीक
बहुत
है।
ज्यादा,
सहरी का भी अब बाकायदा ट्रेंड बन चुका है,
बहुत
ठीक है।
ज्यादा,
अब सहरी में जी इतना खा लोगे पूरा दिन, आप वो उसी के ही जो है वो गुलूदगी में और उसी
तीन दिन
में,
नहीं खाने की जरूरत
हाँ
पड़ती
जी,
है।
और शाम को फिर आप ऐसा खा लो कि जो है आपके लिए तरावी पढ़नी भी मुश्किल हो जाए। बेसिकली ये खाना पीना मकसद ही नहीं है, जिसको हमने ना हम जो चूंकि उसको एक कल्चरल इक्विवेंट बना के और उसको उसको खाने पीने का, हम आप देख लें कि हमारी खवातीन बेचारी, ठीक है, वो जब वो उठती हैं सुबह, पहले तो वो सहरी वाले बर्तन हैं उनको किया, उसके बाद ही अफतारी की तैयारी शुरू हो गई, फिर अफतारी
बेशक
करके फिर रात को जिस फिर सहरी की तैयारी करके सोनी। अब उन बेचारियों का काम, खवातीन का वो काम मजीद बढ़ जाता है कि अपनी इबादत भी करनी है, प्लस घर वालों की खिदमत भी, प्लस घर वालों की जो डिमांड्स हैं, हर एक की अपनी अपनी डिमांड होती है और उसमें उनको वो किया जाता है।
और इसी बात पे वॉल्यूम कम कर दी गई होगी मर्द हजरात ने इस वक्त सुनते हुए, तो आप जारी रखिए।
जी, तो देखें कि हम जब ये बात करते हैं कि खास तौर पे हम जहाँ पे एज माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी के तौर पे अब हमारे कोलीग्स हैं कि जो नॉन मुस्लिम होते हैं, इसी तरह हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहाँ उनके क्लास फेलोज और दीगर जो है वो नॉन मुस्लिम, और उनके साथ उन्हें उनकी डिबेट होती है, डिस्कशन होती है यूथ की
बिल्कुल
बाकायदा इस मौजू पे कि आप रोज़ा क्यों रखते हैं। तो रोज़े का जो बुनियादी मकसद है, ये हमारी एक इबादत है, इबादत जैसे नमाज हमारी एक इबादत है, ठीक है, इस तरह रोजे की भी एक इबादत है, ठीक है, जैसे हज एक इबादत है, इसी तरह जकात भी हम उसको प्रॉपर एक इबादत दी, सिर्फ माली। अब इसमें ये चीज आ जाती है कि नमाज एक बदनी इबादत है, रोजा भी बदनी इबादत है कि इसमें हम अपने बदन को इस्तेमाल करते हैं, जकात एक माली इबादत बन जाती है, उसमें हम अपने पैसे देते हैं, और हज जो है उसमें दोनों चीजें हैं कि उसमें आपका सरमाया भी लगता है और आपके जो आपका वक्त भी लगता है, आप अपने जिस्म को भी उसमें लगाते हैं, थकाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यानी जिस्म जिस्मानी इबादत हो या माली इबादत हो, बुनियादी तौर पर इबादत का जो कंसेप्ट है कि अपने रब के साथ ताल्लुक मजबूत करना है, मेरा रब मुझे देख रहा है, इस एहसास को उजागर करना रोजे का मकसद। अल्लाह ने कुरान में यही बताया, सूरह बकरा में रोजे की फर्जियत का जिक्र, पहली उम्मतों का जिक्र करके भी मकसद जो बताया वो तकवा है, और तकवा किसी जाहिरी कैफियत का नाम नहीं, तकवा इस बात का नाम है कि हम अपने रब के सामने हैं, ठीक है, हमारा रब हमें देख रहा है। जिस तरह आजकल होता है ना कि हम जहाँ पे जाते हैं तो जी यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, कैमरे की निगाह आपको देख रही है, ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता है कि लोग थोड़ा सा ना केयरफुल हो जाते हैं कि जी यहाँ पे कैमरा है या स्पीड कैमरा है या पार्किंग में कैमरा लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा वो
जी
करके कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम एक इंसानों की बनाई हुई एक चीज कि जिसकी वजह से हमारे खिलाफ एक प्रूफ बन सकता है, उसमें हम केयरफुल होते हैं, तो हमारा रब वो तो हमारी शारक से भी ज्यादा करीब है, वो
जी
तो हमें देख रहा है हर वक्त,
बेशक
वो तो ये भी जानता है कि हम सोच क्या रहे हैं, हमारे प्लान क्या है, हमारे ख्यालात क्या हैं, हम करना क्या चाहते हैं, वो ये सारी बातें देख रहा है, सुन रहा है, जानता है। हम किसी को नहीं नहीं भी बताएंगे तो वो जानता है, इसलिए उसका कुर्ब हासिल करना, उसकी ओबीडियंस में, उसकी इताअत में अपने आप को कंट्रोल रखना, ये रोजे का एक मकसद है।
तकवे को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए कोई टिप्स हैं आपके पास उन लोगों के लिए जो के आसान सी टिप्स चाहते हैं? होते हैं कि 5 बुलेट पॉइंट्स, 10 बुलेट पॉइंट्स या 3 बुलेट पॉइंट्स, को ऐसे हों जो कि क्योंकि हम खुद जानते हैं, जैसे कि हम लोगों से बात करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, बहनों से, वो जिस माशरे में अभी रह रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बाहर की ममालिक जहाँ पर हम हैं, अभी मामला इतने खराब हो चुके हैं कि बच्चों को, हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वहां पर उनके ऊपर जो फायर हो रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये गलत किस्म का इनका जो सिस्टम है पूरा, वहां पर ऐसी जगह पर रहते हुए कोई ऐसे पॉइंट्स बताना चाहेंगे आप? क्योंकि सिर्फ नॉर्वे की बात नहीं कर रहा,
जी
हर तरफ जो भी सुन रहा है वो इस वक्त इसी मसले में फंसा हुआ है कि जो सोशल मीडिया का मामला है, जो सब कुछ हमें तबाह करने में लगे हुए हैं, हम अपने आप को कैसे बचाएं? आसान सी टिप्स जहां से शुरुआत तो कर सके बस वो।
असल में इस वक्त दुनिया, इसको कहते हैं ना ग्लोबल विलेज है,
जी
ग्लोबल विलेज बनी है। तो ग्लोबल विलेज बनने के बाद ना, विलेज भी क्या होता है कि आपको छोटी छोटी सी बात का पता होता है कि गांव में फलां घर में क्या हो रहा है, फलां बिरादरी के साथ क्या हुआ, एक्स वाई जेड,
बेशक
सारी चीजें। तो ग्लोबल विलेज जब बनी है, तो ग्लोबल विलेज बनने के बाद ना चैलेंजेस भी अब हमारे कंबाइन हो गए हैं।
बहुत ज्यादा
ऐसे नहीं हो सकता है कि जी पाकिस्तान में रहने वालों की चैलेंज अलग हो और यूरोप में रहने वालों की, बड़ी हद तक जो है सिमिलर जो है वो प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, एक जैसी वो चीजें
जी
होती हैं।
जी
अब इसमें ये चैलेंज हर जगह पे है, लेकिन अब सबसे बड़ा जो है कि तकवा को हासिल कैसे किया जाए, उसकी जो बुनियाद है ना वो आपकी नीयत के ऊपर, आपकी नीयत खालिस हो। आप जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह के लिए करें। हमारे यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि 99%, तो इसमें कोई मुबालगा शायद ना हो, 99% हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमारा एम क्या होता है कि लोग क्या कहें।
बेशक
अब बेशक किसी भी हम अपनी बात को लेके आए, कोई भी हमारा इवेंट है, हर चीज में ना आप जिस बंदे से भी पूछेंगे यार इसको सादगी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आगे से क्या कहते हैं कि वो जी नाक कट जाएगा,
हाँ।
लोग क्या कहेंगे। या तो लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें लोगों का डर है, लोगों की परवाह है, लेकिन हमें अल्लाह का डर नहीं है। अल्लाह का डर उस लिहाज से नहीं है कि हम अल्लाह को नऊज़ु बिल्ला, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की परवाह हम नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें लोगों की परवाह होती है। तकवा की जो बुनियाद है ना कि आप अल्लाह की परवाह करें, आप अल्लाह को अपनी प्रायोरिटी बनाएं, अपनी नीयत खालिस रखें
हर एक मामले में,
हर एक मामले में।
ज़कात देते हुए भी जाहिर बताने की जरूरत नहीं,
आप
सदका देते हुए पता है कि जरूरत नहीं बताने की, सब कुछ मैंने इस दफा इतने दिए हैं।
बिल्कुल। दूसरा ये है ना कि आप किसी के साथ में मुस्कुरा के भी मिलते हैं। एक बंदे ने आपके साथ मिसबिहेव किया, आप जवाब में उसके साथ उसको मुस्कुरा के मिलते हैं, स्माइल देते हैं। क्यों देते हैं कि अल्लाह ने कतअ रहमी से मना किया, ठीक है। अब नीयत आप ये हो जाएगी तो आपको उस मुस्कुराने पे भी सवाब मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ अपनी इंटेंशन और उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करना पॉजिटिव अप्रोच के साथ, तो ये आप यही तकवा है। तकवा किसी जाहिरी जुब्बा दस्तार और उन चीजों का नाम नहीं है।
तो तकवा एक किस्म की पहली स्टेप होगी ना, और यही सारी स्टेप्स आगे आसान करेगा आपके लिए।
जी
तकवे से शुरुआत कर लें, मतलब
तकवा ही हमारा एम, यानी इसमें देखें ना, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, यानी अपने रब को अपनी प्रायोरिटी बना लो। अच्छा, नमाज का अकीम सलात अल जिक्री, हज का जिक्र किया, व तज़व्वदु फिज़ादिरा लो फइन खैरज़्ज़ाद तकवा, उसमें भी आपने रुपए पैसे पे फोकस नहीं करना है, उसमें भी आपका मकसद अल्लाह की रजा होनी चाहिए। ये तो हमारे यहाँ एक तो सोशल मीडिया के आने के बाद ना, यानी अगर हम कहें शो ऑफ बहुत ज्यादा, हर चीज आप जी अब अफ्तारी कर रहे हैं, अब जो है वो सैरी कर रहे हैं, अब सैरी की तैयारी हो रही है, हमने ना उसको एक इवेंट बना लिया, और इवेंट की तरह उसमें क्या हो गया है कि वो जो हमारी रूहानी बालिदगी थी, ठीक है, रूहानी नशोनुमा थी, उसके अंदर ताजगी थी, वो सारी चीजें अब पीछे चली गई। अब रोजा आता तो है, लेकिन एक रस्मन हम रोजा रखते भी हैं, लेकिन रोजे की बरकत का हमें मुशाहिदा नहीं होता है। जिसको इकबाल ने कहा था ना कि रह गई रस्म अजां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। तो रस्म अजां वो एक रस्म वाली बात है, हम रोजा रखते हैं, लेकिन रोजे की बरकत, रोजे के बाद हमारी जिंदगियों में चेंजिंग, वो चीजें नहीं आती हैं। और उसकी शायद बुनियाद यही है कि हमारी नीयतें और हमारी प्रायोरिटीज और वो चीजें, जब तक वो ठीक नहीं होंगी तो उसके बाद वो सारी चीजें बाकी भी ठीक शायद
कैसे,
होना मुश्किल।
कैसे चेंज होगा सब कुछ? आई मीन आपको भी पता है, आप इमाम हैं एक मस्जिद में, और जाहिर सी बात है आप उत्पात वगैरह भी देते हैं जुमे के दिन, रमज़ान में भी आपकी तरफ से बयान होंगे मुख्तलिफ किस्म के, अच्छे अच्छे से टॉपिक्स पे। कैसे चेंज होगा सब कुछ? ये सारे मिलके करेंगे, या फिर आप बार बार, वो कहते हैं ना पानी जब कतरा पड़ता रहेगा तो वो पत्थर के अंदर थोड़ा सा सुराह होगा, वो कतरा कब कब शुरू करेंगे आप?
देखिए, जो वाजो नसीहत है ना, ठीक है, वाजो नसीहत एक ये पानी वाले कतरे वाली बात है।
जी जी,
लेकिन असल जो तब्दीली आती है बंदे के अंदर से,
ठीक है,
बंदा अपने दिल का दरवाजा खोले और उसके बाद बंदा खुद थोड़ी सी ना पॉजिटिव होकर कोशिश करता है, तो अल्लाह भी रास्ता आसान कर देते हैं।
बेशक
अल्लाह ने ये वादा किया है कुरान करीम के अंदर कि अल्लाह हर किसी को रास्ता सीधा नहीं दिखाते, वयहदी इलैही मन यशा युनीब, कि जो इनाबत इख्तियार करता है अल्लाह उसे रास्ता, यानी जिस जो बंदा यानी चाहता है ना, उसके अंदर एक तड़प है, उसके अंदर एक प्यास है, वो ये चाहता है कि वो दीन सीखे, वो ये चाहता है कि वो अल्लाह का کے قریب ہو، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے.
تڑپ کے بغیر نہیں ہوگا، تڑپ کے بغیر
تڑپ نہیں. اگر آپ یہ نہیں ہے، آپ یہ کہیں کہ جی دوسرے کریں گے تو میں کروں گا، دوسرے یہ کریں گے، لیکن جب تک آپ کو کوئی دوسرا بندہ باہر سے فورسفلی آپ سے نماز کوئی شاید پڑھوانا چاہے پڑھوا لے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ کا دل ہی نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا نا. اسی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں وہ حدیث یاد کرنی چاہیے، اس میں سات کوالٹیز ہیں، سات قسم کی کوالٹیز وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان میں فرمایا کہ سات قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اب ان میں ایک بندہ وہ ہوگا کہ وہ صدقہ کرتا ہے اور ایسے پوشیدہ انداز میں کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں. ٹھیک، اب دائیں ہاتھ سے اس نے دیا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہے، یعنی اس کے اپنے جسم کا حصہ ہے نا بائیں ہاتھ، اس کو بھی نہیں پتہ ہے، ایسے اس نے خفیہ انداز میں دیا ہے. تو اب آج ہم دیکھ لیں نا کہ ہم جب صدقہ کسی کو دیتے ہیں تو اور نہیں ہے تو دینے والے کو بھی سوقات بتایا جاتا ہے، اس کو احساس دلاتے ہیں. پر یہ ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی ایسا ہو جائے فیوچر میں، وہ ہم تو تمہارے ساتھ تعاون کر کر کے اور تم آج ہمارے سامنے آنکھیں نکال دو، یہ چیزیں ساری صدقہ گزارا کرتا
ہے، بہت عام ہو چکا ہے. اور یہ خاص طور پہ اپنے بائیں بازو کو چھوڑیں، دوسروں کے ہر بندے کے بائیں بازو کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا دیا ہے اس محلے کے، اس شہر کے، اس فیس بک کے ہر پروفائل پہ.
تو یہ چیزیں دیکھیں کہ اگر ہم اس طرح پوشیدہ انداز میں کریں، یہ چیز ہمارے تقویٰ کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ تعلق کے حوالے سے بات کہی کہ وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کیا اللہ کا گھر ہے، اجتماعیت کا مرکز ہے، مسجد کی آبادی کی وہ فکر کرتا ہے، تو وہ بندہ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. پھر اس کی پوری ایک تفصیل ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے.
تو ابھی رمضان آنے میں کچھ دن باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی زندگی عطا کرے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے گزار سکیں. تو جن خواتین کا آپ نے ذکر کیا جو اس طرح کے سسٹم میں پھنس چکی ہیں، میں خود دیکھتا رہا ہوں گھر میں اپنی والدہ کو پہلے، اور پوری کا پورا سسٹم جو ہے ایسا ہے کہ اس میں سے کوئی نکل نہیں پا رہا. تو آپ کوئی ٹپس وغیرہ دیں گے، کیونکہ اس وقت مرد بھی سن رہے ہیں جو کہ میرڈ ہیں، اور خواتین بھی سن رہی ہیں، تو ان کے لیے وہ اپنا رمضان کیسے گزاریں کہ عبادت بھی کر سکیں اور اس چیز کو تھوڑا سا ایک لیول تھوڑا سا نیچے کر لیں، ایک کھانے بنانے کے سیٹ اپ کو. آبویسلی بنانا تو پڑتا ہی ہے، لیکن اس سال کیا کرنا چاہیے ان کو کہ ان کی زندگی اس رمضان میں تھوڑی سی آسان ہو جائے کہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے کر سکیں.
دیکھیں نا کہ جب عبادت کی بات آتی ہے نا، اللہ نے اس میں کوئی مرد عورت کا فرق نہیں رکھا ہے. اللہ قرآن میں بڑا واضح طور پر فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہے اور چاہے عورت ہے، تو یہ لوگ ایمان کی حالت میں ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو اللہ نے کوئی اس میں جو ہے نا وہ ڈفرنس نہیں رکھا ہے. نمازیں مردوں پہ بھی پانچ ہی فرض ہیں اور عورتوں پہ بھی پانچ ہی فرض ہیں. روزے مردوں پہ بھی رمضان کا پورا مہینہ فرض ہے اور عورتوں پہ بھی پورا مہینہ فرض ہے. حج مرد بھی صاحب استطاعت ہوگا اس پر فرض ہوگا، اور عورت صاحب استطاعت ہوگی تو اس پر بھی فرض ہوگا. اسی طرح زکوٰۃ، اگر مرد کے پاس سیونگ ہے اس نے بھی وہی 2.5% دینی ہے، اور عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی تو اس نے بھی 2.5 دینی ہے. اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، یہ بالکل سیم ہے، ان میں کوئی
ڈفرنس ہم لے کے آئے ہیں سارے. میں جا رہا ہوں، آپ بیٹھ کے کھانا کھاؤ.
اب اس میں دیکھیں، اب گھر کا پہلے تو ماحول اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. ہماری مائیں بہنیں بھی کہ اتنا زیادہ تکلفات دیکھیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عام دنوں میں جو آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں وہی کھانا بنائیں، اس میں ایکسٹرا چیزیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مرد بھی تھوڑا سا اس پہ سیکریفائس کریں، وہ انہیں ٹائم دیں، روم دیں، سپیس دیں، تاکہ وہ بھی عبادت کر سکیں. جیسے ہم اب نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، انہیں بھی اسی طرح تراویح کی، انہیں بھی اسی طرح باقی اذکار کی، تلاوت کی ضرورت بھی ہے، اور انہیں بھی روحانی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں تھوڑا سا یعنی آپس میں اگر ہم یہ کہیں کہ ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کریں، ہیلپ کریں، تو وہ کیا جائے،
ہو سکتا ہے
بڑی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ گھر کا ماحول، مردوں کو بھی اس چیز کا دیکھنا چاہیے کہ خواتین انہوں نے بھی اسی طرح عبادت اور ان کے باقی سارے معاملات بھی اسی طرح ہی ہیں. پلس یہ کہ گھر کا کام، پلس یہ کہ बच्चे उनकी वो बहुत सारे काम और बन जाते हैं।
हम्म,
तो इस हवाले से जो चीज़ हमें सिखाई गई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर दुआ हम सुनते हैं कि रजब के महीने से हुजूर रमज़ान की तैयारी और उसका इस्तकबाल। तो ये बेसिकली क्या है, जैसे हम ज़मीन तैयार करते हैं ना, हमने फसल काश्त करनी, तो पहले हल
दहेज
चलाते
करते हैं।
हैं, ज़मीन को नरम करते हैं, फिर ज़मीन जब नरम हो जाती है फिर उसमें हम जो है वो बीज डालते हैं, फिर खाद डालते हैं, फिर पानी देते हैं और फिर वो फसल। तो ये जो पहले 2 महीने थे रजब और शाबान का, ये एक तरह से जो दिल की ज़मीन है उसको तैयार करने के महीने थे कि हम अपने आप को, अपने जिस्म को, इबादत और उन चीज़ों पे थोड़ा सा तैयार करें, जहनी तौर पे तैयार हों, और जब रमज़ान आ जाए तो उसकी बरकतें, ताकि हम उनको जज़ब कर सकें, उनको अपने वजूद का हिस्सा बना सकें। और इसमें अभी जो प्रैक्टिकली काम किया जा सकता है कि आप अपनी जॉब जो स्केड्यूल है उसको थोड़ा सा रमज़ान के लिहाज से मैनेज करें, इसी तरह घर का जो सौदा सलफ हम वो पूरा एक दिन सौदा सलफ लेने पे लगाते हैं, तो वो रमज़ान से पहले ही आप सौदा सलफ ले आएं कि हमारा महीने में इतना राशन लगता है, इतनी चीज़ें लगती हैं, वो पहले ही आप ला के रख लें ताकि थोड़ी सी आसानी हो। फिर इसी तरह ये चीज़ें भी हमारे यहाँ एक बन चुका है आजकल, एक स्टेटस सिंबल होता है कि जी इफ्तार डिनर है, इफ्तार पार्टीज हैं, एक जगह पे आप जा रहे हैं, एक को आप इनवाइट कर रहे हैं, सोशली होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उसमें आप देखिए कि अब जो लोग होस्ट हैं, जो उसको होस्ट कर रहे हैं, उनकी पीछे कितनी मेहनत बेचारों की लगेगी। और फिर दूसरा ये है कि उनकी इबादत और बाकी जो सारे मामलात हैं वो खुद मुतासर होते हैं, जिसके घर में आपने अफ्तारी रखी हुई है, 10-15 बंदे हैं, 5 हैं, 7 हैं, तो वो तो पूरी फैमिली तो उसमें बिजी हो गई है ना, क्योंकि कम अज़ कम उस दिन की अफ्तारी, उस दिन की नमाजें, उस दिन की तरावी, वो सारी चीज़ें तो मुतासर होंगी। तो उन चीज़ों को अगर थोड़ा सा मैनेज हम कर लें।
जो अपने दिल की जमीन को तैयार नहीं कर पाए, उनके लिए आखिर में 2-3 मिनट में आप बताएं क्या करना चाहिए उनको।
देखिए अभी भी वक्त मौजूद है, अभी भी वक्त मौजूद है, अभी भी तैयारी की जा सकती है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट की जाए, मेहनत की जाए और अपने वक्त को कीमती बनाया जाए। देखें वो कहते हैं ना कि एक बुजुर्ग वो बड़ी मशहूर बात करते हैं, कहते हैं कि रमज़ान की जो दिन है ना, 29 या 30 दिन गिने हुए चंद दिन हैं, और दिन जब गिने हुए हैं तो उनके घंटे भी गिने हुए हैं, ठीक है,
जी
उनके फिर मिनट्स भी गिने हुए हैं,
बेशक,
उनकी सेकंड्स भी वो काउंटिंग में आते हैं। तो आप उनको उसी तरह, यानी जिस तरह आप उनकी काउंटिंग कर रहे हैं, उसी तरह उनको आप जो है ना प्रीशियस बनाएं, कीमती बनाएं और उनको इफेक्टिव बनाएं। बेसिक तो ये चीज़ है कि हम देखिए रमज़ान में ना वो लोग, हमारे खाने पीने की रूटीन तो बदलती ही है, साथ सोने की भी बदल जाती है, साथ जागने की भी बदल जाती है, साथ जो है बहुत सारी और चीज़ें भी। तो हम अपने आप को उसी तरह नॉर्मल इंसान ही रखें, कोई जैसे आप पहले नॉर्मल थे रमज़ान से पहले, उसी तरह रमज़ान के दौरान। सिर्फ ये है कि हमें आम दिनों में भी तो ऑर्गेनाइज तरीके से दिन गुजारने चाहिए, रमज़ान में उसको मजीद ऑर्गेनाइज किया जाए। फिर ताल्लुक बिल कुरान बड़ा ज़रूरी है, आप हर नमाज का थोड़ा सा एहतमाम करें कि नमाज बाजमात पढ़ें, मस्जिद जाएँ, मस्जिद नहीं तो घर में, ऑफिस में नमाज बाजमात का एहतमाम कर लें, और कुरान की तिलावत नमाज से पहले या नमाज के बाद बेशक 5 मिनट ही कर लें, एक सफ़ा 2 सफ़े कुरान के पढ़ें,
शुरू तो
ये
करें।
जी शुरू तो करें, और उसको अगर ट्रांसलेशन के साथ, तर्जमे के साथ शुरू करें। और फिर अगर आप इसमें एक टिप ये भी दूंगा कि अगर रात को जो आपने तरावी में सुनना है उसको अगर आप पहले से पढ़ के आए, तो यकीन मानिए कि आपको सुनते हुए भी मज़ा आएगा, लज्जत आएगी। और रमज़ान में आप ये कोशिश ये करें, हमारे यहाँ एक और ट्रेंड भी है कि हम कहते हैं कि कहाँ पे जी तरावी जल्दी पढ़ाई जाती है, ठीक है, कौन से जी इमाम साहब हैं जो जल्दी पढ़ते हैं, तो उसमें भी वो 1 घंटे में फारिग कर देते हैं, तो वो इमाम साहब तुझे खत्म ही नहीं करते, पूरी रात खड़ा किए रखते हैं, इस तरह
सही
की
बात
बातें
है,
भी।
सोचिए जरा कैसा हमारा
तो
ईमान का
देखिए
लेवल हो जाए।
कुरान कुरान के साथ ताल्लुक, और कुरान आराम से जहाँ पढ़ा जाए, सुकून के साथ सुना जाए, पढ़ा जाए, तो वो चीज़ें, कुरान का एक अपना असर है, उसकी अपनी बरकतें हैं।
बिल्कुल, बहुत
तो
बहुत
जब उसको
शुक्रिया।
तर्जमे के साथ पढ़ के आप आएंगे रात को, फिर वही आप सुन रहे होंगे, तो उसका असर आपके दिल के ऊपर कुछ और अंदाज में होगा।
बहुत खूबसूरत टिप है, मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अमल करने की। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी उर्दू पॉडकास्ट पे। हमारे आज के गेस्ट थे मौलाना सलीम अलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी।